أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. کتاب آموزش فلسفہ کے چھٹے درس میں ہماری بحث چل رہی تھی، اور اس میں بعض مقدماتی بحثیں کہ جو تعریف فلسفہ اور موضوع فلسفہ کو سمجھنے کے لیے ضروری تھی، ان کا بیان جاری تھا. بحث ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب آیت اللہ مصباح فضح اللہ نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی بھی علم کی بحث کرتے ہیں، کسی بھی علم کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، اور موضوع کو تحقیق کرنے کے لیے جن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس علم کا موضوع مطلق ہے یا کوئی نہ کوئی قید رکھتا ہے. چونکہ جب تک صحیح طریقے سے موضوع کی شناخت نہیں ہوگی، موضوع کے بارے میں صحیح طریقے سے علم معرفت حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ اس علم کے اندر جو مسائل کا اثبات ہے، جو مسائل کے اندر مختلف آپ روشیں اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اور آپ کی اس علم کے اندر جو تحقیق ہوگی وہ ناقص شمار ہوگی. کہ اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، اس کو دوبارہ جو ہے وہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم نے یہ بحث کر لی، تو پھر اس کے بعد اگلا عنوان جو شروع ہوتا ہے وہ ہے کہ علوم جو ہیں وہ دو قسم کے مبادی رکھتے ہیں. مبادی العلوم جن کو کہا جاتا ہے، یا آپ اگر انگلش میں اگر اس کو ترجمہ کرنا چاہیں گے، میرا خیال میں وہ یہی ہوگا، پرنسپلز آف سائنسز، تقریباً یہ مبادی و اصول، کہ جن کا سمجھنا علم میں وارد ہونے سے پہلے ضروری ہے. اسی علم سے مربوط ہیں یہ چیزیں، لیکن علم کی بحثیں شروع کرنے سے پہلے ان مبادی کو سمجھنا ضروری ہے. درست ہے؟ بس ایسے مسائل یا ایسے مفاہیم کہ جس کو علم شروع کرنے سے پہلے جن کا جاننا ضروری ہے، جن کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، ان کو کہتے ہیں مبادی، علم کے مبادی شمار ہوتے ہیں. کہ عبارت میں دیکھیں گے آگے آیت اللہ مصباح نے اس کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر آپ تحقیق کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے تین چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ موضوع کی شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں. مثلا آپ نے ایک علم جو ہے اس کی تحقیق شروع کی، مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں فزکس میں کام کرنے کے لیے. فزکس کا کیا موضوع ہے؟ تو فزکس کا موضوع ہم نے کہا کہ مادہ ہے کہ جس کے اندر قید لگی ہے کہ اس کی جو ظاہری تبدیلیاں پائی جاتی ہیں اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو قید لگی ہوئی ہیں اس میں مادے کے اندر. اب کوئی بندہ آ کر مثلا آپ جیسے، معمولاً کیا ہوتا ہے جب نئے نئے فزکس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب اس طالب علم کے لیے خود مادہ و میٹر کا مفہوم کلیئر نہیں ہوتا کہ مادہ و میٹر کسے کہتے ہیں. تو اب ضروری ہے کہ جو بندہ فزکس پڑھنا چاہ رہا ہے، جس کو آپ فزکس پڑھانا چاہ رہے ہیں، اور فزکس کا موضوع بھی مادہ ہے، تو آپ اس طالب علم کے لیے واضح کریں کہ مادہ کسے کہتے ہیں. بس پہلی چیز کے جو جاننا ضروری ہوتی ہے وہ ماہیت و مفہوم وجود کی شناخت ہے. دوسری چیز پھر یہ آ جاتی ہے، طبیعی چیز ہے یہ، کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ مادہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں. اب آ کر یہ بحث یا یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ مادہ وجود بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. جس مفہوم کو آپ نے ہمارے لیے واضح کر دیا ہے، अब वो वजूद रखता है या नहीं रखता। बस दूसरा मरहला आता है वजूद मौजू को पहचानना, कि मौजू का जो वजूद है वो है या नहीं है। अगर मैं मंतिक की ज़बान इस्तेमाल करना चाहूँ, मंतिक मुजफ्फर में आपने पढ़ा है, जो हमारा पहला सवाल है या पहली शनाख्त है वो है मा हुआ की। इल्म मंतक में जब बाबे तारीफ शुरू होती है, मंतिक मुजफ्फर हर तालिब इल्म जो इसको पढ़ता है, वहां पर सवाल के मुख्तलिफ मराहिल बयान किए हैं। आपने किस चीज के बारे में सवाल करना है तो उसमें कौन सा आपने जुमला इस्तेमाल करना है। अगर आप हकीकत के बारे में पूछना चाहते हैं तो कहते हैं मा हुआ से सवाल करना है, और इस तरीके से सिलसिला चलता है। तो पहला जो मरहला है जहां पर हमने मफहूम व माहियत मौजू को पहचानना है वह मा हुआ का मरहला है। यानी अगर हम अरबी में सवाल करना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि मा हुवल मौजू, मौजू क्या, की हकीकत क्या है, ये मेरे लिए खोलो। मैं पूछूंगा मा हियल मादा, आपने कहा कि फिजिक्स का मौजू मादा है, तो अब सवाल यानी आप यूंगे तालिबे इल्म का सवाल यही है अरबी में, अगर वो सवाल करे मा हियल मादा, मादा क्या है, इसकी हकीकत क्या है। चूंकि अरबी फसी जबान है तो हर मरहले के लिए उसके अलग वर्ड हैं। जब हमें पता चल गया कि शनाख्त मौजू हो गया, मफहूम उसका वाज़े हो गया, अब मरहला आता है हाल हुआ का। मतलब आप आकर ये नहीं सवाल करेंगे कि माहियल मादा, आप कहते आप सवाल पूछेंगे कि हालिल मादा तो मौजूदा, ये जो मादा जिसकी वजाहत आपने मेरे लिए की है ये वजूद भी रखती है, रखता है या नहीं रखता। तो ये जो मरहला है ये हल हुआ का मरहला है। ये फारसी के मुताबिक हम 87 सफ़े पर जो है वो मबाहिस जो मौजूद हैं इसकी बारे में बात कर रहे हैं। तीसरी जो चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है वो है वो उसूल के जिन के तवस्सुत से उस इल्म के मसाइल को साबित करना है। मसलन आप फिजिक्स, आपको पता चल गया फिजिक्स का मौजू क्या है, आपने कहा मादा है, मैटर है, और उसकी खसूसियात के साथ के जो बयान की थी। फिर आपको ये पता चल गया कि ये मादा व मैटर के जो फिजिक्स का मौजू है ये वजूद भी रखता है, वाकईयत रखता है। ऐसा नहीं है कि मसलन इंसान के जहन की इख्तरा है और उसको इख्तरा करने के बाद फिर एक इल्म को जो है वो तश्कील दे दिया गया, ना, वाकईयत का एक हिस्सा है, वाकईयत का एक जुज है ये मैटर। खूब जब ये भी पता चल गया तो अब ये सवाल आता है कि मैंने फिजिक्स में जो बहस करनी है वो किन उसूलों की बुनियाद पे करनी है। जो मैंने मसाइल इस इल्म के अंदर इस बात करने हैं, जो मसाइल मैंने इस इल्म में बयान करने हैं, किन उसूलों के तहत बयान करने हैं, आया इसमें अकल से इस्तेफादा किया जा सकता है, आया इससे इसमें तजुर्बे से इस्तेफादा किया जाएगा, आया इसमें हम जो है वो शहूद से मसलन कुरान से इस्तेफादा कर सकते हैं, या इसके अलावा और सारे बहुत सारे उसूल व कवायद व जवाबित के जो इल्म फिजिक्स के ऊपर हाकिम हैं उनके बारे में आप शनाख्त हासिल करेंगे। मसलन आप तजुर्बे के बारे में जानेंगे कि तजुर्बा किसे कहते हैं और उसके अलावा जो कवानीन व कवायद होंगे। तो ये तीन सवालात हैं कि जो एक इल्म को शुरू करने से पहले इंसान के जहन में आते हैं और इनका जानना बेहद जरूरी है हर इल्म को शुरू करने से पहले। फिर जनाब आयतुल्ला मिसबाह हफ़ज़हुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो शनाख्त तीन किस्म की हमने बयान की हैं, इनमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये शनाख्त बदीही होती है। बदीही होने से क्या मुराद है कि बाद में जाके तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू होगी, एपिस्टेमोलॉजी की जब हमारी बहस शुरू होगी मारिफत शनासी की, तो बदीही और नजरी क्या है, इसका मिलाप क्या है, वहां पर डिस्कशन होगी, लेकिन मुख्तसर तौर पे हम यहां पर यह बयान कर दें कि मुराद यहां पर यह है कि वो इतना वाज़े और रोशन है कि उसको इस बात करने की जरूरत ही नहीं है, बयान वजाहत इसकी जरूरत ही नहीं है, उसको बदीही कहते हैं। अगर ये शनाख्त जो है वो बदीही होगी तो जाहिर सी बात है फिर तो कहीं बहस करने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे ही इल्म को शुरू करेंगे कहा जाएगा इस इल्म का मौजू क्या है, ये मौजू है, तो वो इतना वाज़े होगा कि अब सवाल ही नहीं उठेगा कि ये मौजू जो है इसकी क्या हकीकत है, इस ये मौजू जो है वजूद रखता है या नहीं रखता, तो इतना वाज़े होगा कि उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, इंसान उसकी निस्बत डायरेक्ट इल्म में वारिद हो जाएगा और उन मसाइल को हल करने लग जाएगा जो उस इल्म में मतलूब हैं। लेकिन कहते हैं बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात ये तीन शनाख्त जो आपकी खिदमत में अर्ज की हैं इनमें से सब ये बाज़ क्या होते हैं, बदीही नहीं होते बल्कि नजरी होते हैं, यानी इनको बयान करने की, इनकी वजाहत करने की जरूरत पेश आ जाती है। तो कहते हैं जब ये वजाहत की जरूरत पेश आ रही है तो आपने इसको किस इल्म में जाकर बहस करनी है, ये अहम मसला है। बात वाजे हो गई, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो मतलब जो है वो समझ में आना जो है वो शुरू हो जाएगा और मंतकी तरतीब से हम आगे चल रहे हैं कि यहां तक हमारे लिए बात वाजे हो गई कि ये जो तीन शनाख्त जिक्र की हैं ये कभी बदीही होती हैं और कभी नजरी होती हैं। बदीही है उसमें तो बहस की जरूरत नहीं है, जब नजरी होगी तो उसमें बहस की जरूरत है। यानी क्या मुराद, यानी मौजू का मफहूम हमारे लिए वाजे नहीं है, हमारे लिए वाजे करो, मौजू का वजूद हमारे लिए साबित नहीं है, हमारे लिए साबित करें। उस इल्म के अंदर जो मौजूद उसूल हैं कि जिनके जरिए आपने मसाइल इल्म को हल व फसल करना है, वो उसूल हमारे लिए वाजे नहीं है, उसको हमारे लिए वाजे करें। दोस्त जब ये वाले सवाल होंगे चूंकि वाजे नहीं हैं तो अब क्या होगा, इनको खोलने की जरूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तीन शनाख्तें हम कहां बयान करें, इन तीन शनाख्तों को हम किस इल्म में बयान करें, चूंकि तबका बंदी अलूम के ऊपर भी हमारी गुफ्तगू हुई है ना, अभी हम फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, अब हमने मैटर के मफहूम को खोलना है, फिर मैटर के मसलन जो है वो वजूद को इस बात करना है और उसके अंदर मौजूद उसूल जो हाकिम है उसको तालिब इल्म के लिए वजाहत करनी है या पढ़ने वाले के लिए जो है वो वजाहत करनी है, खूब फिजिक्स में इसके बारे में बहस करें या फिजिक्स के हट कर कोई एक ऐसा इल्म है कि जहां पर हम इन बहसों को जाकर पहले हल करके आए, पहले समझ के आए, फिर हम इल्म फिजिक्स के अंदर आकर इसको बहस करें। एक मैं और मिसाल देता हूं जो इस किताब में मौजूद है ताकि मतलब और ज्यादा खुल जाए, मैं मैटर की मिसाल दे रहा हूं। एक बंदा अगर कहेगा मैटर तो वाज़े है हमारे लिए, मादा इंसान के लिए बदीही है, तो मिसाल कोई और लेते हैं। हम एक मिसाल लेते हैं कि जो वाकई मिसाल समझने के लिए आसान है, वो क्या है, रूह की मिसाल है। मसलन आप एक इल्म के बारे में बहस करना चाह रहे हैं जहां पर उसका मौजू जो है वो रूह है, इंसान है। अब जाहिर सी बात है रूह की हकीकत वाजे नहीं है, तो अगला बंदा फौरन आकर सवाल ये करेगा मा ही है रूह, रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है, रूह मेरे लिए वाजे करो, रूह किसको कहते हैं, मैं तो इंसान को बदन देख रहा हूं, बदन के अलावा भी आया कोई हकीकत है, तो वो रूह, रूह का मफहूम पहले मेरे वाजे करो। अब जब उसके लिए आप रूह का मफहूम वाजे कर देंगे तो अब आ जाएगा अच्छा ये रूह नाम की कोई चीज है भी सही, साबित करें। मुझे तो जो कुछ नजर आ रहा है उसका बदन नजर आ रहा है, जितने भी आमाल है इंसान के वो बदन और उसके मग्ज और इन चीजों के साथ वाबस्ता है कि रूह आप कैसे इसको साबित करेंगे, आया रूह नाम की हकीकत वजूद भी रखती है या नहीं रखती है, तो अब आपको जरूरत पेश आएगी कि आप रूह के वजूद को साबित करें। और फिर जिस इल्म में आप रूह के बारे में बहस कर रहे होंगे तो उसके अंदर जो हाकिम उसूल होंगे मुमकिन है आपको उसकी भी वजाहत करना पड़ जाए। तो अब हम क्या करें, इन चीजों को उसी इल्म में बयान करें कि जिसको हम अभी पढ़ना चाह रहे हैं, जिसको हम अभी तहकीक करना चाह रहे हैं, या ना अलग इल्म इसके लिए वज किया गया है, हम वहां पर जाकर इसको पहले सीखेंगे, हासिल करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद इस इल्म को हम आकर हल व फसल जो उसके अंदर मसाइल हैं उनको बयान करेंगे। तो जनाबे आयतुल्ला मिस्बाह हफ़ज़हुल्ला फरमाते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये जो हमने मतालिब बयान किए हैं, तीन शनाख्तें जो बयान की हैं, दुरुस्त है, ये तीन शनाख्तें ऐसे मतालिब हैं कि जहां पर आप इसको बयान करेंगे, या बल्कि जहां नहीं, इन मतालिब को इस्तिलाही जबान में मबादी कहा जाता है, कि मैंने पहले जिसकी मुख्तसर वजाहत कर दी थी और अब जो है इतनी वजाहत के साथ फकत इसी जुमले को खोलने के लिए बयान की है, और आगा मिसबा ने इन मतालिब को बयान किया है कि मबादी किसे कहते हैं इस्तिलाही जबान में। मबादी इन तीन शनाख्तों को कहते हैं कि जो तमाम उलूम के साथ मरबूत होती हैं, और हर इल्म के अंदर चूंकि ये तीन शनाख्तें हासिल करना जरूरी हैं, तो ये जो मतालिब हैं इनको मबादी कहा जाता है। यानी जहां जब आप मौजू की हकीकत पर बात कर रहे होंगे, मौजू के वजूद को साबित कर रहे होंगे, मौजू के साथ उस इल्म के जो उसूल हैं हाकिम हैं, और उनके जरिए आप हल्लो फसल करेंगे जाकर मसलन मसाइल को, उन उसूलों पर आप बात कर रहे होंगे, इस इन मतालिब को, इन मबाहिस को कहेंगे ये मबादिए इल्म है। अगर मैटर के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे ये मबादी हैं इल्म फिजिक्स के। अगर आप रूह के बारे में बात कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि मबादी हैं इल्म रूह के लिए। अगर इसी तरीके से बाकी उलूम जो है वो लेकर आ जाएं, तो फरमाते हैं, देखें नीचे फरमाते हैं कि इन गुने मतालिब रा मबादिये उलूम मीनामंद, इन इस किस्म के मतालिब को मबादिये उलूम कहा जाता है। फिर फरमाते हैं ये मबादी दो किस्म के हैं। जब आपके लिए मबादी की इस्तेलाह खुल गई, जिनको इंग्लिश में अर्ज किया कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंसेस कहा जाता है, अगरचे प्रिंसिपल का लफ्ज जो है बहुत आम है, हर किस्म के उसूल को प्रिंसिपल कहा जाता है, लेकिन यहां पर अगर मबादी का तर्जमा प्रिंसिपल के साथ भी किया जाए तो हम कहेंगे प्रिंसिपल का लफ्ज यहां पर एक खास माना रखता है। जहां जिस तरह के हम मबादी को अगर लुगत में जाकर देखें तो इसका और माना है, लेकिन जब इस्तेलाही माना हम आकर करते हैं ये कोई और माना बनता है आकर। तो लिहाजा इंग्लिश में भी इस बात का ख्याल रखा जाए, अगर कहीं आप देखते हैं कि मबादी का तर्जमा जो है वो प्रिंसिपल्स किया गया है या प्रिंसिपल किया गया है, तो उससे मुराद यही इस्तेलाही माना है। प्रिंसिपल के लफ्ज़ वर्ड सुन के किसी और माने की तरफ नहीं जाना, कि जो उमूमन हम हर किस्म के उसूल से मद्देनजर रख लेते हैं उसको। तो मबादी कहते हैं कि दो किस्म की हैं, मबादी तसव्वुरी हैं और मबादी तस्दीकी हैं। यही तीन शनाख्तों को दस्ताबंदी कर रहे हैं। शनाख्त हम समझ चुके हैं, फकत हमने इनको तबका बंदी करना है, इसके दस्ता बंदी करना है, इसकी तकसीम बंदी करनी है कि ये तीन शनाख्तें इन दो किस्मों में कहां कहां आएगी। हो, फरमाते हैं कि मबादी तसव्वुरी किन मबादी को कहा जाता है, कि जहां पर मौजू की माहियत को बयान किया जाता है। जब आप मौजू के मफहूम को वाज़ेह कर रहे होंगे, जब आप मौजू की तारीफ कर रहे होंगे, ये जो आप मतालिब कर रहे हो, बयान कर रहे होंगे, इनको कहा जाता है मबादिये तसव्वुरी। क्योंकि तसव्वुर और कंसेप्शंस के साथ मरबूत है, क्योंकि आप यहां पर मफहूम और माहियत को खोल कर बयान कर रहे हैं, तो लिहाजा जहां पर भी मफहूम का मैदान आ जाए, मफहूमी मैदान को तसव्वुर को कहा के साथ ताबीर किया जाता है। तो बस जो मतालिब आप इस मफहूमी मैदान में बयान कर रहे होंगे वो मबादी क्या कहलाएंगे, मबादिये तसव्वुरी। बस मबादिये तसव्वुरी में आप क्या करते हैं, आप मौजू की माहियत, मौजू के मफहूम को खोल कर बयान कर रहे होंगे, मौजू की तारीफ कर रहे होंगे। और मबादिये तस्दीकी किसे कहते हैं, मबादिये तस्दीकी यही बाद वाली जो दो शनाख्तें हैं, वो दो शनाख्तें जहां पर बयान होंगी उनको मबादिये तस्दीकी कहा जाएगा। यानी जहां पर आप मौजू के वजूद को साबित कर रहे होंगे, जहां पर आप उस इल्म के अंदर मौजूद उसूलों को बयान कर रहे होंगे तो उनको क्या कहेंगे, उनको मबादी तस्दीकी कहेंगे, क्योंकि यहां पर तसव्वुर से ताल्लुक नहीं है, यहां पर आप मफहूमी गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, यहां पर आप इस बात की तरफ बात कर रहे हैं और इस बात का जो ताल्लुक है वो तस्दीक के साथ है कि तसव्वुर और तस्दीक की माहियत और हकीकत पर आप मंतिक में पढ़ चुके हैं और अभी आगे मार्फशनासी और पैसमोलॉजी की जब हमारी बहस आएगी तो वहां पर तफसील से एक गुफ्तगू होगी इसके ऊपर भी। बस मबादी तस्दीकी बाकी दो शनाख्तों के साथ मरबूत है और मबादी तसव्वुरी में हम क्या करते हैं, मफाहीम को बयान करते हैं, वजाहत करते हैं उसके अंदर जो मफाहीम उस इल्म के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। मसलन फलसफे के अंदर जब आप वारिद होंगे तो आप कहेंगे कि फलसफे का मौजू है अल मौजूद बिमा हुआ मौजूद, तो अब सवाल यह होता है कि मौजूद बिमा हुआ मौजूद किसे कहते हैं, आप उसकी वजाहत करेंगे तो वो वजाहत जो आप बयान कर रहे होंगे वो मबादी तसव्वुरी कहलाएगी। आप मफहूम वजूद को खोल रहे होंगे, मबादी तसव्वुरी हैं। आप मफहूम असालत को खोल रहे होंगे, ये क्या है, मबादी तसव्वुरी होंगे। और इस किस्म की जो बहसें हैं वो सारी मबादी तसव्वुरी होंगी, लेकिन जहां पर आप मौजू के वजूद को साबित कर रहे होंगे या उस इल्म के अंदर हाकिम उसूल या उसके अलावा भी बाज़ मतालिब हैं उनको आप बयान कर रहे होंगे, वो क्या है, मबादी तस्दीकी कहलाएंगे। खुद मसला जो है वो उसके अंदर चला जाएगा मसले के हवाले से, लेकिन मफहूमी बहस जो है वो मबादी तसव्वुर ही कहलाएंगे इसमें। अब अगर चल के करते हैं, यहां तक तो हमें बात हो गया। अब बात ये हमारी चली थी कि हमने इस इल्म में बहस करनी है या कहीं और करनी है जाकर, तो कहते हैं मामूलन ऐसा होता है कि जो मबादी तसव्वुरिया की बहस है वो उसी इल्म में की जाती है, उसके लिए अलग इल्म ही बनाया जाता, लेकिन मबादी तस्दीकी जो होते हैं वो मामूलन उस इल्म से हट कर बहस की जाती है। दुरुस्त है, मसलन जब हमने ये बात की आकर के फिजिक्स का जो मौजू है वो मादा है, अब मादे का माना व मफहूम क्या है, जब जो टीचर जो है वो फिजिक्स पढ़ा रहा होगा वो उसी इल्म के अंदर या फिजिक्स की किताब लिखता है वो वहीं पर ही उसकी डेफिनेशन कर देता है कि मादा किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं, और इन चीजों को वही उसी इल्म में खोल देता है, यानी मबादी तसव्वुरी को उसी इल्म के अंदर मुकदमे के तौर पर बयान कर दिया जाता है। लेकिन मबादी तस्दीकी या कि आया ये वजूद रखता है या वजूद नहीं रखता, इसको हम किसी और इल्म से जाकर साबित करते हैं। मतलब मादे के वजूद को कौन साबित करेगा, फिजिक्स तो साबित नहीं करेगा, क्योंकि फिजिक्स ने तो मादे के अहकाम को बयान करना है ना कि मादे के वजूद को साबित करना है। मादे के वजूद को कोई और इल्म साबित करेगा, जब वो मादे का वजूद साबित हो जाएगा उस वक्त फिजिक्स की नौबत आएगी कि अब ये मादा हमारे पास मौजूद है इस कायनात के अंदर, अब इसके अहकाम क्या हैं, वो अहकाम हमारे लिए बयान करो। दुरुस्त है, बस मबादी तस्दीकी जो हैं वो मामूलन दूसरे उलूम में बहस की जाती है और जो मौजू से मरबूत बहसें हैं, मफहूम से मरबूत बहसें, मबादी तसव्वुरी हैं जो, वो उसी इल्म के अंदर जो है वो बहस कर दी जाती हैं। दुरुस्त है, यहां तक बात वाज़े हो गई। जब तो अब जनाब आयतुल्ला मिस्बाह हफ़ज़हुल्लाह एक मतलब की याद दहानी कराते हैं कि अब सवाल ये होता है ना कि वो कौन सा इल्म है जहां पर ये सारी बहसें होंगी मबादी तस्दीकिया के हवाले से, वो कौन सा इल्म है, तो कहते हैं आपको याद होगा कि जब हमने फलसफाए इल्म की मुख्तलिफ इस्तेलाहों को बयान किया था तो तीन इस्तेलाहें हमारे सामने आई थी। कौन सा वो दर्स था कि जहां पर हमने मफाहीम को खोलना शुरू किया था कि कौन कौन सी इस्तेलाहें इस्तेमाल होती हैं। मसलन आप चले दर्स नंबर 4 में, दर्स नंबर 4 के अंदर फारसी किताब के मुताबिक 65 नंबर सफे पर अगर आप आ जाएं तो यहां पर एक मतलब बयान करना शुरू किया था फलसफा इल्म, फलसफा इल्मी जिसको ये कह रहे हैं, इसकी फिर क्या है तीन इस्तेलाहों को इन्होंने यहां पर बयान किया था। दुरुस्त है, तीसरी इस्तेलाह क्या है, जीम 66 सफे के ऊपर जो है वो यहां पर बयान कर रहे हैं। पहला क्या है, ये इस्तेलाह है दीगर जो कह रहे हैं फलसफा इल्मी, क्या मुतरादिफ मुरादिफ बा क्या मेथोडोलॉजी है, रविशनासी है इसके अंदर। क्या होता है यहां पर, हर इल्मी बेमुक्तजा इन्नो ए मसाइल रविश खासरा बराए तहकीक व इस्बात मतालिब मी तलबात, यानी आप किस किस्म की रविश से उस इल्म में बहस करना चाहते हैं, इन रविशों पर जो है वो गुफ्तगू करने वाले इल्म को फलसफा इल्मी कहते हैं। जब ये हमने बहस कर ली तो अगले चैप्टर में जब हम आए दर्स नंबर 5 में, तो बिल्कुल ही इब्तिदा के अंदर आकर इन्होंने उनवान दिया फलसफा उलूम के नाम से। फलसफा उलूम में आकर इन्होंने इसकी तीन इस्तेलाहें, ये हम मद्देनजर है हमारे फलसफे उलूम। यहां पर आप देखें ये आखिरी पैरा इसका जो है, यहां पर आकर बयान करते हैं, कहते हैं वली गाही इन ताबीर बेमाना ये दीगर बेकार मी बरा मीरावद, के फलसफे इल्म की जो ताबीर है वो एक और माना में इस्तेमाल होती है। क्या, व आन तबयीन उसूल व मबानी व बे इस्तेलाह मबादी इल्म दीगर, यानी फलसफाए इल्म के अंदर जाकर हम क्या करते हैं, मबादी इल्म की गुफ्तगू करते हैं। और यहां पर जो मबादी जिक्र होते हैं ये सारे तकरीबन जो हैं या अक्सर जो हैं वो मबादी तस्दीकी कहलाते हैं। मसलन देखें तारीखचा, इसको बयान इस इल्म को का इस इल्म का बानी, इस इल्म का हदफ क्या है, इस इल्म की रविश क्या है, इस इल्म में क्या तहवुलात आए हैं, इस किस्म की जो बहसें हैं ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, वो फलसफाए इल्म में बहस की जाती है। तो मबादिये तस्दीकी मामूलन उसी इल्म के फलसफे में बहस की जाती हैं इस इस्तेलाह के मुताबिक। वाइला फलसफा इल्म के बहुत सारे मानी है, लेकिन इस इस्तेलाह के मुताबिक हम इल्म फिजिक्स के जो मबादी तस्दीकी हैं वो कहां पढ़ेंगे, फलसफा इल्म फिजिक्स के अंदर। रियाजी की मबादी तस्दीकिया कहां पढ़ेंगे, फलसफा इल्म रियाजी के अंदर। फलसफे के मबादी तस्दीकी हम कहां पढ़ेंगे, फलसफा फलसफा के अंदर। दुरुस्त है, तो फलसफा इल्म एक जुदा इल्म के उनवान से जो है आजकल मुतआरफ है, कि जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिस इल्म के बारे में आप बहस करना चाह रहे हैं उसकी मबादी तस्दीकिया को बयान किया जाता है। बताजे देखें इबारत, फरमाते हैं कि जो मबादी तस्दीकी हैं गालिबन दर उलूम दीगरी मोरद बहस करार मी गिरंद, सफा 88 के ऊपर गालिबन जो है दूसरे इल्म में मोरदे बहस करार पाते हैं, यानी मबादी तस्वुरी उसी इल्म में लेकिन मबादी तस्दीकी किसी और इल्म में है। चनान के कबलन इशारे कर दीम, जिस तरह के हमने पहले इशारा किया है कि फलसफाए हर इल्मी दरवा के इल्म दीगर यास्त, हर इल्म का जो फलसफा है यानी फलसफाए इल्म एक दूसरा इल्म है के ओहदेदारे बयान व इस्बात उसूल व मबादी आन मी बाशद, के उस इल्म के अंदर उस इल्म के जो उसूल हैं जो मबादी हैं उसको यहां पर बयान किया जाता है। पर वाजे बस ये बात भी वाजे हो गई कि मबादी तस्दीकिया आजकल जो है वो फलसफाए इल्म में इसकी बहस होती है, और फलसफा वही उसी इल्म का, ना कि मुतलक बेमाने फलसफा इल्म, मसलन फलसफा इल्म फिजिक्स, फलसफा इल्म रियाजी, फलसफा तारीख, फलसफा मसलन जो है बाकी उलूम उसके अंदर जो है वो बहस होती है। खुद लेकिन कहते हैं कि बाज मसाइल कुल्ली नोयत के जो होते हैं, कुल्ली तरीन नोयत के जो होते हैं वो वाले मबादी तस्दीकी फलसफे में बयान किए जाते हैं। चूंकि हमने ये बयान कर दिया कि मबादी तस्दीकी किसी दूसरे इल्म में बयान किए जाते हैं, अब मबादी तस्दीकी बाज जो हैं इतने कुल्ली नहीं होते, बल्कि उसी इल्म के साथ मरबूत होते हैं, तो उनको हम उसी इल्म के फलसफे में बहस कर देते हैं। लेकिन बाज मबादी तस्दीकिया एक ऐसे मतालिब पर मुश्तमिल होते हैं कि जो न फकत फिजिक्स को शामिल होते हैं बल्कि और भी उलूम को शामिल होते हैं। तो लिहाजा ये जो कुल्ली तरीन मबादी तस्दीकी हैं, इसका ओहदेदार कौन है? फलसफा। देखें इबारत, सर अंजाम कुल्ली तरीन मबादिये उलूम दर फलसफाए उला या मेटाफिजिक मोरद बहस व बर्रसी वाकई भी शवंद। जो कुल्ली तरीन मबादी होंगे उसको हम फलसफे में जाकर बयान करते हैं। खूब मिसाल अगर बयान कर दें तो मतलब आसान हो जाएगा, लिहाजा आयतुल्ला मिसबा ने यहां मिसाल भी दी है। क्या फरमाते हैं? देखें, आप किसी भी इल्म में चले जाएं, अगर आप उस इल्म के अंदर कानून बनाना चाहते हैं या आप उस इल्म के अंदर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप उस वक्त तक एक कानून को इस्तेखराज नहीं कर सकते, एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते जब तक आप कानून इल्लियत के कायल ना हो जाएं। इल्लियत को मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप इल्लियत को नहीं मानेंगे तो आप किसी भी इल्म के अंदर क्या है, नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, कानून नहीं बना पाएंगे आप। अगर आपको याद हो जब हम कलामे जदीद के अंदर बहस कर रहे थे, इल्हाद की बहस और उनके मबानी को रद्द कर रहे थे, तो इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू हुई थी कि किस तरीके से अगर इल्लियत को ना माना जाए तो आप किसी भी इल्म से कोई कानून अख्ज नहीं कर सकते। तो असल इल्लियत जो है ये एक ऐसा कानून है कि जो तमाम तजर्बी उलूम में इस्तेफादा होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे और जितने भी उलूम हैं उसके अंदर ये इस्तेफादा होते हैं। तो अब क्या करें, इस कायदा इल्लियत को कौन साबित करेगा? क्योंकि ये एक ऐसी असल है जो फिजिक्स में इस्तेमाल हो रही है, ये एक ऐसा कानून है जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो असल इल्लियत बयान नहीं होती, तो कहां बयान करें इसको? ये क्या है? मबादी तस्दीकी है। किसकी? सब उलूम की। क्योंकि ये कायदा हर इल्म के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, इस कायदे के तहत तमाम उलूम के मसाइल हल होते हैं। और हमने कहा है कि वो कायदा जिसके साथ उस इल्म के मसाइल हल हो जाएं वो कायदा मबादी तस्दीकी कहलाता है। उसूल चुके बात की थी उसकी, तो अब असल इल्लियत उलूम के लिए मबादी तस्दीकी की हैसियत इख्तियार किए हुए है। तो इस मबादी तस्दीकी को हम कहां बहस करें? कहते हैं कि ये चूंकि कुल्ली तरीन मबदा तस्दीकी है, इसको हम फलसफे इसमें बहस करेंगे। क्यों? क्योंकि फलसफे का मौजू मौजूद बेमाऊ मौजूद है, तो इल्लियत उसी के साथ मरबूत है, तो इल्लियत को हम बहस भी वहां करेंगे। बात वाज़ेह है? देखें, अज जुमला मीथवान अज असल इल्लियत याद कर दर के वो कुल्ली तरीन मबादी उलूम के जहां फलसफे में बहस उनको करनी है या मेटाफिजिक इल्म के अंदर उसको बयान करनी है, उनमें से एक कौन है? असल इल्लियत है। कि दर हमें उलूम तजर्बी मोरद इस्तेनाद दानिशमंदान में बाशत, तमाम तजर्बी उलूम में उलमा इससे इस्तेफादा करते हैं, उसके माहरीन उससे इस्तेफादा करते हैं। वह असासन पयूहिशहा ये इल्मी बापजीरुफ्तन कबल ये इन असल इंजाम नी गिरद। कहते हैं जितने भी आप तहकीक कर ले इल्मी, सबसे पहले आपको इस असल को कबूल करना पड़ेगा, तब आपकी तहकीक जो है वो कोई नतीजा देगी। और फिर आगे मतलब बयान करने सारी इबारत पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक मबादी की इस्तिलाह हमारे लिए वाजे हो गई कि मबादी उन मतालिब को कहा जाता है कि जो एक इल्म को शुरू करने से पहले जरूरी होती हैं, और वो मबादी दो किस्म की हैं, या तसव्वुरी हैं या तस्दीकी हैं। तसव्वुरी के अंदर हम मौजू के मफहूम और उसकी माहियत को बयान करते हैं, यानी हम मफहूम मफहूमी बहस करते हैं वहां पर, और मबादी तस्दीकिया के अंदर हम या मौजू के वजूद को साबित कर रहे होते हैं या उन उसूलों पे बहस कर रहे होते हैं कि जिन उसूलों के जरिए उस इल्म के मसाइल हल होने हैं, वो मबादी तस्दीकिया कहलाएंगे। اور مبادی تصوریہ کو معمولاً علماء اسی علم میں بحث کرتے ہیں، اور مبادی تصدیقیہ جو ہیں وہ دوسرے علم میں بحث کرتے ہیں۔ مبادی تصدیقیہ کس علم میں بحث کرتے ہیں؟ بعض مبادی ایسے ہیں کہ جو اسی علم کے فلسفے میں بحث ہوتی ہے، جیسا کہ بیان کیا فلسفہ علمی فزکس، فلسفہ ریاضی، فلسفہ مثلا یہ سارے آ جائیں گے، اور بعض مبادی ایسے ہیں کہ جو فلسفے میں بحث ہوتی ہے، چونکہ وہ کلی ترین مبادی تصدیقی ہیں، جس میں سے ایک مثال ہم نے علیت کی دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ وارد ہو جاتے ہیں موضوع فلسفہ میں، اصل بحث کہ جس کے لیے ہم نے یہ تمام مقدمات بنائے تھے کہ ہمیں یہ موضوع فلسفہ اور تعریف فلسفہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، کہ انشاءاللہ اس کو پھر بعد والے درس میں دیکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔